from the conference center at Temple Square
is. The conference center is the music Kagerjan, Tim the Noki Center, 180th Nadar Varsik, Mahasamelan Hay, Siske, Bas, Bashan Karta Girjagarke, Maha Adikario or Mahapad Adikario, Messachinege Hay. Moment Tabernacle Gaik Mandlitwara is Sabaka Sangit Pradan Kiagea Hay. Girjagar Kesadasi or Adikari Dunya Kisabi Bago say, I hay Taki, Apne Girjanata say, Salah or Adash Prop Kreis again.
This broadcast is furnished.
Marvel distribution द्वारा इस प्रसारण को जनता सेवा रूप में प्रति कही गई है बिना लिखाए लिखित अनुमति के इस कार्यक्रम को कोई भी अभिलेखन प्रतिलेखन या अन्य इस्तेमाल बना है. President Henry B. Eyring, प्रधान अधिसूचना के पहले सलाहकार इस गिरजाघर से इस सभा को संचालन करेंगे.
Brothers and sisters, we welcome.
हम आपका स्वागत करते हैं ईसा मसीह के गिरजाघर अंतिम दिनों के संतों का 180th अधर्वार्षिक महासम्मेलन के पहले बैठक में और एक खास स्वागत करते हैं उन सदस्यों और दोस्तों का जो यहां इस कॉन्फ्रेंस सेंटर और विश्व भर में जहां कहीं भी भाग ले रहे हैं. प्रधान मॉनसन थॉमस एस मॉनसन जो इस सम्मेलन में नेतृत्व करता है ने बतलाया है कि मैं इस सभा को कंडक्ट करूं. हम आभारी हैं जनरल अधिकारियों और जनरल ऑक्सिलरी अध्यक्षताओं को उपस्थित की इस सम्मेलन में. हम आभारी हैं उन सभी दूरदर्शन प्रसार केंद्रों सेटेलाइट और केबल व्यक्तियों के लिए जिन्होंने इस सम्मेलन को दुनिया भर पहुंचा रहे हैं. इस बैठक के संगीत टैबरनकल क्वायर द्वारा प्रदान किया गया जाएगा मैक वुलबर्ग और रायन मर्फी के निर्देशन में और ऑर्गन पर होगा क्ले क्रिस्टेंसन. गायक मंडली इस सभा गाइड अस ओ थाउ ग्रेट यहोवा गाकर शुरू किया और अब हमें देंगे लेट ज़ायन इन हर ब्यूटी राइज. Elder Octaviano Tenorio, Satar Kir Pratna Bolenge.
Yeah. Our Father in heaven.
Ei hamare swar sida parmeshwar. Hum bahut abhari hain aapke bete Yeshu Masih ke liye. Aur jo aashirwad jo hame mila hai. Aur aapke girja ghar ke liye hum abhari hain aur bhavishyavakta ke liye abhari hain.
As we begin the first session of this conference.
जैसे हम ये पहला कॉन्फ्रेंस सेशन शुरुआत करते हैं हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी पवित्र आत्मा हमारे हृदय में रहे कि हम सब समझ सके जो हमें बतलाया जाएगा और उससे अपने परिवार में भी लाए और हमारे भविष्यवक्ता प्रेसिडेंट थॉमस एस मॉन्सन के साथ हो कि उसके बातों को हम सुने जो आपकी बातें होंगी और अपने जिंदगी में को संभारे और ये सब हम आशीर्वाद आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम से कहते हैं आमीन
We shall now be pleased.
Hamare Bhavishvakta Pradhan Thomas S. Munson ko sunkar prasan hoge. Unke tipinyo ke baad gayak mandali gayegi. We thank thee, O God, for a prophet. Git ki samapti par Elder Jeffrey R. Holland, jo bara ke parishat ke hai, hum se baat karenge. Phir Sister Rosemary Wixon, jo prathmik ki maha pradhan है को सुनेंगे उसके बाद हम एल्डर क्लॉडियो आर एम कॉस्टर जो 70 की अध्यक्षता है से सुनेंगे प्रेसिडेंट मॉन्सन
माय बिलव्ड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स
मेरे प्यारे भाइयों और बहनों हम महासम्मेलन में आपका स्वागत करते हैं जो अनेक प्रसारणों द्वारा सुना और देख रहा है दुनिया भर में हम उन सबको धन्यवाद देते हैं जो इस महासम्मेलन के जटिल कार्यों का ख्याल रख रहा है अप्रैल में जब हम पिछली बार मिले थे से अब तक गिरजाघर के कार्य आगे बढ़ा है बिना कोई रुकावट के कई नई मंदिरों संपन्न करना गया है अपने सलाहकारों और अन्य महाअधिकारियों के साथ मैंने गिला वैली एरिजोना वैंकूवर ब्रिटिश कोलंबिया सीबू शहर फिलीपींस में और कीप यूक्रेन की इन सभी स्थानों के मंदिर बहुत सुंदर है एक हर एक हमारे सदस्य के जीवन को आदर्श दे रहा है हर एक मंदिर संपर्ण से पहले का शाम हमें एक संस्कृत समारोह में भाग लिए थे जिसमें हमारे युवा और कुछ बड़े सदस्यों ने भी भाग लिया था यह समारोह बड़े स्टेडियम में आयोजित हुए थे हालांकि कीव में हम एक सुंदर महल में आयोजित थी वहां का नाच गाना संगीत के प्रदर्शन और नमशे बहुत बढ़िया थे मैं अपना प्रशंसा और प्रेम उन सबको प्रस्तुत करता हूँ हर मंदिर संपन्न के धार्मिक उत्सवता हमें प्रभु की आत्मा सब में महसूस की अगले महीने हम लाइए हवाई मंदिर को फिर से समर्पित करेंगे जो हमारे पुराने मंदिर में से एक है जो और जिसने पिछले कई महीनों में बहुत सुंदर कार्य से गुजरा है हम इस पवित्र समय के इंतजार कर रहा हूँ हम मंदिरों का निर्माण जारी रखेंगे आज सुबह मैं 5 और मंदिरों के बारे में बतलाऊंगा जो आने वाले महीनों और वर्षों में निर्माण होगा लिस्बन पोर्चुगल इंडियानापोलिस इंडियाना रेनेडा फिलीपींस हार्टफोर्ड कनेटिकट डियाना मेक्सिको जो रीतियों मंदिरों में पूरी होती है हमारे उदार और हमारे मृत प्यारे जाने की उदार के लिए आवश्यक है हम मंदिर जाने में विश्वास रहे और हमारे सदस्य के और करीब बनाया जा रहा है। अब हमारे भाषाकर्ताओं से आज सुबह सुनने से पहले क्या मैं एक विषय पर बोल सकता हूँ जो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। मैं प्रचार कार्य पर बोलना चाहता हूँ। पहले एरोनिक प्रोहितों की जवान पुरुषों और उन जवान पुरुषों के लिए जो एल्डर बनने जा रहे हैं, मैं वही कहूँगा जो पुराने भविष्यवक्ताओं ने इतने दिनों से कहा है कि हर योगी काबिल जवान पुरुषों को प्रचार कार्य की सेवा पर जान के। जवान पुरुष, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि हम प्रचार कार्य की सेवा की तैयारी करो। अपने आप को साफ और पवित्र और योग्य रखो प्रभु के कार्य के लिए। अपना स्वास्थ्य और शक्ति का ख्याल रखो। धर्मशास्त्र का अध्ययन करो। जहाँ उपलब्ध है वहाँ सेमिनरी और इंस्टीट्यूट में भाग लो। अपने आप को प्रचारक किताब प्रिच माई गॉस्पल गॉस्पल से परिचित रखो। एक सलाह तुम जवान बहनों के लिए, जबकि तुम्हारे जवान पुरुषों की तरह कि पुरोहित जिम्मेदारी नहीं है पूरे समय के प्रचार कार्यों में भाग लेने का, तुम भी प्रचारक होकर मूल्य का योगदान दोगे। और अब तुम बुजुर्ग भाइयों और बहनों से हमें कई ज़्यादा और बुजुर्ग दंपति प्रचारक चाहिए। हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके विश्वास और श्रद्धा के लिए। यीशु मसीह के समाचार में तुम अपनी इच्छा से और अच्छी तरह और बहुत अच्छाई करते हैं। तुम्हारे लिए जो भी दंपति प्रचार कार्य के सेवा प्रदान करने के उम्र के नहीं है, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि इस दिन के लिए आज तैयारी करो। जैसे तुम्हारी प्रस्तुतियों मौका दे जब तुम रिटायर होने होंगे और जब स्वास्थ्य मौका दे अपने आप को उपलब्ध कर जाएंगे। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे समय है जब तुम्हें आनंद होगा पूरे समय के सेवा के मधुर आश्वास और संतुष्टि प्रकार स्वामी के काम में। अब हमारे भाइयों और बहनों, तुम प्रभु के आत्मा से जब जाओ जब हम उनके सेवाओं की सुनेंगे अगले दो दिनों में, कि ये हर एक का आशीर्वाद हो। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन।
President Monson.
President Monson.
Entire worldwide membership of this church.
और सभी गिरजाघर के सदस्य हम इकट्ठा होकर कहते हैं कि हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके जो कुछ करते हैं उसके लिए हम आभारी हैं हम आपसे प्रेम करते हैं और आपको हम सस्टेन करते हैं इस साँझ को हमें मौका मिलेगा कि हम अपने हाथ ऊपर करके प्रेसिडेंट मॉन्सन और सभी को जो चर्च के गिरजाघर में है उसको हम सस्टेन कर गए क्योंकि मेरा नाम भी वहाँ पर बोला जाएगा मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि आपको मैं धन्यवाद देता हूँ कि बिना आपके प्रार्थना के कारण हम ये कार्य नहीं कर पाएंगे आपके प्रेम के सिवाय ही हम आपके प्रेम के कारण हम ये सब काम कर सकते हैं और हम आप लोगों को सस्टेन करते हैं और आपसे भी हम प्रेम करते हैं
from the faith and devotion of every member of this church, whoever you may be, in whatever country you live,
और आप जहाँ कहीं भी हैं, और चाहे कुछ भी आप अपने ज़िंदगी में करते हैं, हम आप सबसे कहते हैं कि हम आपसे प्रेम करते हैं। आप जो भी करते हैं, यीशु मसीह की कार करते हैं।
Personal value, the sacred splendor of every one of you, is the very reason there is a plan of salvation and exaltation.
आप सभी के लिए यीशु मसीह का सुसमाचार है.
Don't turn and look at your neighbor. I'm talking to you.
आप दूसरों को मत देखिए. मैं आपसे कहता हूँ. मैं ये बताना चाहता हूँ कि प्रभु आपसे प्रेम करता है. मैं उसका वाणी बोलता हूँ कि और आपको धन्यवाद देता हूँ कि सभी अच्छाइयाँ आपने किया है उनके लिए और बलिदान जो आपने दिया है उसके लिए हम बहुत आभारी हैं और मैं उन जीवन औरत नेताओं का आभारी हूँ जो लड़कियों के काम करते जाते हैं और बिना शैम्पू नहीं है ये मस्कारा जो गवाही के सभा को दुआ अलावा के इर्द में करती है कुछ बहुत शक्ति भरे आत्मिक अनुभव के वो लड़कियों या वो नेताओं अन्य जिंदगियों में अनुभव करेगी वो एक छोटा सा कुल था छोटा असली अपने मरे हुए बच्चे भाई के सफर को वापस स्वर्ग के घर पहुंचाने के लिए जैसे गर्म और आसान सहायक संस्था की बहनें उसने उसे होना चाहती थी हमारे परिवार के लिए भोजन दिया गया था सेवा के बाद मुफ्त में दिया गया था बिना ही हमारे गुजारिश के बहुत आभारी के साथ प्राप्त किया गया मुस्कुराओ अगर तुम चाहो हमारे परंपरा के भरे में मगर किसी भी तरह गिरजाघर की औरतें ने जो हमेशा अपने कार्य पर तारीफ नहीं सुनती वहाँ पर हमेशा थी जब ढीला हाथों और निभल घुटनों को सीधा करो वो यीशु के पवित्र बातों को समझ गए थे तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों के साथ किया वो मेरे ही साथ किया और भी सही है पुरोहितों के भाइयों के लिए मैं समझता हूँ उदाहरण के तौर पर हमारे जीवन पुरुषों के नेताओं जो मौसम और स्थिति को देखते हुए चाहे जाओ 80 माइल्स हाइक्स पर मुसीबत ट्रेन में ये खोलिए और उसमें सोने की कोशिश करो बर्फ के खुफे में थोंड के रातों में एक की जिंदगी में वो सबसे लंबी रातें लगती है कुछ साल पहले मैं आभारी था अपने खुद के उच्च पुरोहितों ढल के यादों से मैं बहुत आभारी हूँ गिरजाघर के शिक्षकों अध्यापकों रिक्शाओं के बड़े नंबरों से उन लोगों को याद न करना जिन्होंने हमें समय मेजों को तैयार किया और कुर्सियों को नीचे धरा मैं उन बच्चों का आभारी हूँ जो सात कार्य को करते हैं और बाद जिंदगी में बीमारों की देखरेख करना या बूढ़े माता पिताओं की देखरेख करना जिन्होंने कभी उनकी देखरेख किया है और लगभग सच्ची बड़ी बहन जिसने हाल में फुसफुसाया जैसे क्षमा मांग रही हो मैं गिरजाघर में कभी भी नेता किसी चीज में नेता नहीं रही हूँ मैं सिर्फ सहायक रही हूँ मैं कहता हूँ प्यारी बहन धन्यवाद स्वर्ग को मेरे और सारे सहायकों के लिए राज्य में हम में से कुछ जो नेता हैं आशा करते हैं कि किसी दिन हमें भी परमेश्वर के साथ की स्वर्गति मिलेगी जो तुम्हें पाया लिया है अक्सर मैं ऐसे लोगों का आभार करता हूँ प्रेसिडेंट जेम्स ई. फाउस्ट 13 साल पहले इस स्थान पर खड़ा हुआ और कहा जब मैं एक छोटा लड़का था मुझे मेरी नानी ने याद है हमारे लिए स्वादिष्ट भोजन पकाती हुए लकड़ी के चूल्हे में जब लकड़ी का बक्सा चूल्हे के बगल में खाली हो जाता नानी धीरे से बाहर जाती सीधर लकड़ी के देर से उसे भरती मैं इतना सुन था कि मैं वहाँ बैठ गया और अपनी प्यारी नानी को उस बॉक्स को भरने दिया फिर उसका आवाज़ रुकती हुई दुख के साथ उसने कहा मैंने अपने आप पर शर्म महसूस किया और अपनी गलतियों के लिए जिंदगी माफ़ी मांगा अगर प्रधान फौज के जैसा आदमी जिससे मैंने बहुत ही सही महसूस किया बतलाता सकता है उसके युवा भरे गलती तब मैं भी उसी तरह का प्रवेश कर सकूंगा और अपने ही गुण गाऊंगा जो मुझे बहुत समय पहले करना चाहिए था जैसा हम प्रचारकों को करने को कहते हैं मैंने पैसे को बचाया और अपने चीज़ों को बेचा ताकि मैं अपने बड़े को भर सकूं जितना मैं कर सकता था तब मैं घर लौटा जब मेरे माता पिता को अपने खुद के मिशन की सेवा का बुलावा आया था अब मैं क्या करूं की तरह मैं एक कॉलेज के शिक्षक के लिए पैसा भरूं किस तरह मैं अपने खाने और रहने के लिए भरूं कि किस तरह मैं अपने दिल के सपने को पूरा करूं सही पेट्रिशा तेरी से मैं कैसे शादी करूं मैंने गलत नहीं समझा या कहे हुए कि मैं बिना हिम्मत और डर गया था ना चाहते हुए भी मैं यही कह के एक बैंक को गया और उसके मालिक से कहा एक परिवार का मित्र मेरे बैंक अकाउंट में कितने पैसे थे वो आश्चर्य हुआ और कहा क्यों जेफ सारे पैसे अभी भी तुम्हारे अकाउंट में है क्या उन्होंने उनमें बतलाया नहीं। हमारा माता पिता चाहते थे कि वो जो कुछ भी मदद तुम्हारे लिए कर सकते वो करे, ताकि तुम कुछ तक कुछ कर सको जब तुम वापस घर लौटो। उन्होंने एक भी तुम्हारा पैसा नहीं निकाला। तुम्हारे मिशन में मैंने सोचा कि तुम जानते होंगे। अच्छा, तो मैं नहीं जानता था। मैं तो जानता था कि मेरा पिता खुद पढ़ा लिखा मुनीन बल्कि खाता देखने वाला। जब वो हमारे छोटे से सर में बुलाया गया बहुत कम आसामियों के साथ, जिसने कभी नया सूट नहीं पहना, आगे जो मैं नहीं जानता था, मगर बाद में सीखा क्या मेरी माँ थी, जिसने अपनी पूरी शादी शुदा जिंदगी में घर के अलावा बाहर काम नहीं किया था। और मिशन पर मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं था, उसमें से एक किसी के बारे में भी नहीं। इस गिरजाघर में कितने पिताओं ने अभी कुल ऐसा किया होगा, कितने माता पिताओं ने ऐसे मुसीबत की घड़ी में ऐसा किया होगा जो मेरी माँ ने किया था। मेरे पिता 34 वर्ष पहले गुजर गए हैं, जो प्रधान फौज की तरह मुझे इंतजार करना पड़ेगा दूसरी बगाव। मगर मेरी प्यारी माँ जो 95 की होगी अगले हफ्ते, इसी खुशी से देख रही थी आज अपने घर पर। जो भी देर नहीं उसे धन्यवाद कहने के लिए। तुम्हारे लिए माँ और पिता और सारे माताओं और पिताओं और परिवारों और विश्वासियों लोगों सभी स्थान पर अपने बच्चों के लिए बलिदान देने के लिए धन्यवाद, और दूसरे लोगों के बच्चों के लिए उन्हें इतने सुविधाओं को देने के लिए जो उनके पास नहीं था, उन्हें वो सबसे अच्छी जिंदगी देने जो वो देख सके। मेरा धन्यवाद सारे गिरजाघर के अच्छे सदस्यों को और कई अच्छे लोगों को जो हमारे धर्म का नहीं है, कि अपने जिंदगी के हर दिन को यीशु के सच्चे सच्चे प्यार को देने के लिए टलता नहीं। तुमसे कोई भी बिना जरूरी का नहीं, कि क्योंकि तुम यीशु मसीह के सुसमाचार को बनाते हैं। इस भाग में वो क्या है, तुम एक जिंदा याद करने वाले हो उसके सुंदरता और दया के, आत्मिक मगर शक्तिशाली विश्वरूप के छोटे से गांव घनों में, और अच्छा जो उसने किया बड़े शहर में, और वो जिंदगी जो उसने दिया दूसरों के लिए शांति और खुशियों लाने के लिए। हम गिरजाघर के अधीक्षकता और कर्मचारियों को आदर मिली जितने बुलाया नहीं। जैसे यीशु ने निफाइटियों से कहा था, वैसा मैं आज कहता हूँ, तुम्हारे विश्वास के कारण मेरा आनंद परिपूर्ण है। जब यीशु ने यह कहा तब वो रोया। भाई और बहनों, तुम्हारे उदाहरण को देखते हुए मैं तुमसे एक नया पक्का इरादा करता हूँ, और ज्यादा विश्वासी होने के लिए, और दलालु और समर्पित और दान और सच्चाई से, जिस तरह तुम्हारे स्वर्ग के पिता है और तुम में से कई अभी हो। ये मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन।
मैंने छोटे से केट के अपने जन्म को देखा। जब उसे अपनी माँ के बाहों में दे दिया गया, केट अपनी माँ के उंगली को पकड़ लिया। वो ऐसा था कि जैसे छोटी केट ये कह रही है कि अगर मैं थामना करूँगी, क्या तुम मेरी मदद करोगे स्वर्ग पिता के पास वापस जाने के लिए। 7 साल के उम्र में जोसेफ स्मिथ को टाइफाइड बुखार पकड़ लिया और उसे उसके पैर में टीका लगाई गई। डॉक्टर नेथन स्मिथ ने इस कार्रवाई को पहली बार किया जिससे कि वो दुष्ट पैर शायद बच जाए। बिना बेहोशी किए डॉक्टर स्मिथ को उसके पैर को काटने की जरूरत पड़ेगा और कुछ दूषित हड्डियों के भाग को निकालना पड़ेगा। जोसेफ ने पीड़ा को अंत तक झेलने के लिए शराब को इनकार कर दिया और कहा, मैं अपने पिता के बाहों में बैठूंगा और फिर मैं वो करूंगा जो जरूरी हो। दुनिया भर के बच्चों के लिए हम कहते हैं, मेरे हाथों को पकड़ो, उसको थाम लो। हम स्वर्ग के पिता के पास वापस जाने के मार्ग पर रहने के लिए साथ रहेंगे। माता पिताओं, नाना नानियों, पड़ोसियों, मित्रों, प्राथमिक नेताओं, हम सब बच्चों को थाम सकते हैं सहायता देने के लिए। हम रुक सकते हैं, नीचे बैठकर उनके आंखों में देख सकते हैं और उद्धारकर्ता के पीछे चलने के प्रार्थिक चाहत को महसूस कर सकते हैं। उन्हें हाथों को थाम लो, उनके साथ चलो। ये हमारी बारी है उनके विश्वास के रास्ते पर सहारा देने के लिए। किसी बच्चे को रास्ते पर अकेले चलने की जरूरत नहीं। जब हम अपने बच्चों को मुक्ति की योजना की जानकारी पहले से दे देते हैं, ये समझते हुए कि योजना उन्हें मदद करेगी सच्चाई जानने के लिए कि वो परमेश्वर के बच्चे हैं और उसके पास उनके लिए योजना है कि वो उनके साथ रहते थे मरणशील जीव पूर्व में, कि वो परमेश्वर की जय जयकार करते थे इस धरती पर आने के लिए, और हम सब फिर परमेश्वर के मदद के द्वारा हम स्वर्ग पिता के पास वापस जा सकते हैं। अगर वो इस योजना और वो कौन है को समझेंगे, वो डरेंगे नहीं। अल्मा 24 में हम पढ़ते हैं, वो हमारे आत्माओं को और हमारे बच्चों से प्यार करते हैं, इसलिए जिससे कि मुक्ति की योजना हम और हमारे भावी संतान को मालूम हो। जब हम लोहे की एक छड़ी को खास कर थामते हैं, हम इस स्थिति में हो जाते हैं कि उनके हाथों के साथ रख देते हैं और सीधा सकरा रास्ता साथ में चलते हैं। हमारे उदाहरण उनके आंखों में बढ़ती है। वो हमारी उदाहरणों के पीछे चलेंगे जब वो हमारे कार्य को सुरक्षित महसूस करेंगे। बच्चे हमारे साथ एकता महसूस करना चाहते हैं। जब एक माता पिता कहते हैं हम कर सकते हैं, हम धर्म सिद्धांत को हर दिन परिवार में पढ़ सकते हैं, बच्चे उसी के पीछे चलेंगे। एक ऐसे परिवार लिखते हैं, हमने थोड़े से शुरुआत किया क्योंकि हमारे बच्चे छोटे थे। हमारा सबसे बड़ा बेटा अभी पढ़ नहीं पाता था, मगर वो हमारे शब्दों को दोहरा सकते थे, तो हमने मोर्मन की धर्मशास्त्र को पढ़ने की शुरुआत किया सिर्फ 3 अर्धिया रात हर रात को। मेरे पति और मैं एक एक अध्याय को पढ़ते और फिर सिडनी एक अध्याय को दोहराता। हम फिर 4 अध्याय से आगे बढ़े और फिर 5 अध्याय को, जब लड़कों ने अध्याय को अपने ही दोहराए शुरू किया। हाँ, वो थकाव था, मगर हम फिर भी पढ़ते रहे। हमने उसे दोहराने पर जोर दिया, ना तो रफ्तार पर। हमें 3.5 साल पढ़ने में लगा। हमने बहुत अच्छा महसूस किया उसे समाप्त करके। उस माँ ने और कहा, हर समय परिवार के साथ धर्मशास्त्र को पढ़ना हमारे परिवार की आदत है। हमारे बच्चे धर्मशास्त्र की भाषा को सही तरीके से जानते हैं और मेरे पति और मैं इस मौका पर अपनी विश्वास की गवाही को बयान करते हैं। बहुत जरूरी है कि हमारे घरों में आत्मा की बढ़ती हो रहा है। क्या तुम इस परिवार के अनुभव को सीखते हो कि क्या मैं कर सकता हूँ? जब हमारे योजना परमेश्वर के वचन को खास कर थाम लेने का हो, हमें धर्मशास्त्र के एक ही अध्याय भी पढ़ सकते हैं। कभी देर नहीं शुरुआत के लिए, और तुम अभी शुरू कर सकते हो। दुनिया हमारे बच्चों को सिखलाएंगे अगर हम नहीं, और बच्चे लायक है वो सब सीखने में जो दुनिया उन्हें सिखलाएंगे उनके जवान उम्र में। हम जो उन्हें 5 साल आगे बताना चाहते हैं उसे आज हमारे बातचीत के दौरान उनके साथ होना जरूरी है। उन्हें हर परिस्थिति में पढ़ाइए, सभी मुसीबतों को, सभी परिणाम, सभी मुसीबतें जो वो सामना करेंगे, उन्हें एक रास्ता मिलेगा कि वो कैसे धर्मशास्त्र के सच्चाई को थामना रहेंगे। शेनोन एक जवान माँ जिसने सोचा नहीं था कि वो अपने बच्चों को प्रार्थना के शक्ति के बारे में पढ़ा सकेगी, जब वो अपनी गाड़ी में बैठ रहे थे अपने घर सिर्फ 40 मिनट के दूर पर। वो वहाँ पर कोई तूफान नहीं था, पर जब उन्होंने अपने घर को छोड़ा, मगर जब उन्होंने कैनियन से होकर गुजरना शुरू किया, वो हल्कीले बर्फ तूफान में बदल गए। गाड़ी रास्ते पर सरकने लगी, कुछ ही देर में कम दिखलाई देने लगा। वो तूफान इतनी गंभीर थी कि शेनो सुरक्षित रास्ता नहीं पा रही थी। दोनों छोटे बच्चे ने उस तनाव के परिस्थिति को महसूस किया और रोने लगे। शेनो ने दूसरे बच्चों से कहा, हाइडी और थॉमस, तुम्हें प्रार्थना करना चाहिए। हमें स्वर्ग पिता की मदद की जरूरत है घर सुरक्षित पहुंचने के लिए। उसके हाथ कांप रहे थे कि वो गाड़ी चला रही थी, फिर भी वो धीरे धीरे छोटे से प्रार्थना को बार बार सुन रही थी जो पीछे के सीट से आ रही थी। स्वर्ग के पिता, कृपा हमारी मदद कीजिए हमें सही सलामत घर पहुंचने में। कृपा हमारी मदद कीजिए कि हम रास्ते से बाहर ना हो। कुछ समय में प्रार्थना ने दोनों छोटों को शांत कर दिया और वो चुप हो गए। सुरक्षित से और एक बार मोटेल में वो नीचे बैठकर और स्वर्गीय पिता को धन्यवाद दिया अपने बच्चों के लिए। उस रात माँ ने अपने बच्चों को विश्वास से प्रार्थना की शक्ति के बारे में बतलाया। हमारे बच्चे कौन सी मुसीबतें झेलेंगे? जोसेफ स्मिथ की तरह हमारे बच्चे भी हिम्मत जुटा सकते हैं, वही करेंगे जो जरूरी है। जब हम योजना बनाते हैं उसे थामने और स्वर्ग पिता की योजना को पढ़ाने के लिए प्रार्थना और धर्म सिद्धांत के द्वारा, वो जानेंगे कि वो कहां से आए थे, वो यहां क्यों है और वो कहां जाएंगे। पिछले बसंत में मेरे पति और मैंने एक सोका के खेल को देखने गए जो हमारे 4 साल के पोते का था। जब आखिरी सीटी बजी, खिलाड़ी ये नहीं जानते थे कि कौन जीते और कौन हारे। उन्होंने सिर्फ खेल को खेला। कोच दूसरे खिलाड़ियों से हाथ मिलाने को कहा। फिर मैंने कुछ ऐसा ना भूलने वाला चीजों को महसूस किया। उस कोच ने जीते हुए को बुलाया। सभी माता पिताएं, नाना नानी और जो कोई भी उस खेल को देखने आए थे खड़े हो गए और दो कतार में खड़े हो गए जो एक दूसरे के आमने सामने था, और अपने हाथों को उठाकर एक झाप को बनाया। बच्चे चिल्लाए जब वो प्रसन्न हुए, बड़े बुजुर्गों के पास दौड़े और दर्शकों के नीचे बनाए हुए रास्ते पर। कुछ ही देर बाद दूसरे खिलाड़ियों के बच्चों ने भी साथ में आए, जैसे कि खिलाड़ियों ने जितने और हारने वाले। उनकी बड़े बुजुर्ग ने प्रसन्नता किया जब वो खुशी से रास्ते पर दौड़ रहे थे। मेरे पास दूसरी चित्र थी। मैंने ऐसा महसूस किया कि बच्चे योगना का को चुनो, वो सीधे और पतले रास्ते पर दौड़ रहे थे। उन जानते के बाहों के नीचे से जो उन्हें प्यार करते थे। जैकब ने कहा, हमारे परमेश्वर की योजना कितनी बड़ी है। उधारकर्ता ने रास्ता को दिखाया और उस पर चले। मैं ये गवाही करती हूँ कि जब हम अपने बच्चे परमेश्वर के पीछे चलाते हैं, हम स्वर्ग लौट जाएंगे और स्वर्ग के पिता के बाहों में सुरक्षित रहेंगे। यीशु मसीह के नाम से आमीन।
मैं इस गिरजाघर में परिवर्तित हुआ हूँ। मैं इतना आभारी हूँ कि परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली और मुझे एक ज्ञान और एक मजबूत गवाही दी कि जोसेफ स्मिथ परमेश्वर का एक भविष्यवक्ता है। यीशु मसीह का गिरजाघर अंतिम दिनों के संतों का मैं बैप्टिज्म लेना करने से पहले मैंने जोसेफ स्मिथ इतिहास के कुछ भागों का अध्ययन किया। मैंने हर एक पैराग्राफ ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद प्रार्थना की, अगर तुम ये खुद करना चाहोगे तो तुम 11 घंटे लग सकते। पढ़ने, विचार करने और प्रार्थना करने के बाद ही प्रभु ने मुझे आश्वासन दिया कि जोसेफ स्मिथ ही उनका भविष्यवक्ता है। मैं तुम्हें गवाही देता हूँ कि जोसेफ स्मिथ एक भविष्यवक्ता है, और मैंने प्रभु से जवाब पाया है। मैं जानता हूँ कि उनके बाद मैं आने वाले भी भविष्यवक्ता है। कितना भारी आशीर्वाद है कि हमारे आज के समय में भविष्यवक्ताएं हैं। क्यों आवश्यक है कि जीवित भविष्यवक्ताओं हो यीशु मसीह के सच्चे गिरजाघर और उसके सदस्यों को मार्ग दिखलाने के लिए। गाइड टू स्क्रिप्चर्स में हम भविष्यवक्ता का शब्द का मतलब पाते हैं एक व्यक्ति जो परमेश्वर द्वारा नियुक्त किया गया है उनके नाम से बोलने के लिए। प्रभु के संदेशवक के रूप में वो भविष्यवक्ता आज्ञाएं, भविष्यवाणी और प्रतिकरण प्राप्त करते हैं। धरती के कठिन दिनों में प्रभु से वाणी, आज्ञाएं और मार्गदर्शन पाने एक बढ़िया आशीर्वाद है। भविष्यवक्ता प्रेरित हो सकते हैं मनुष्य के फीड़े के लिए, भविष्य को देखने के लिए। हमें बतला गया है वास्तव में प्रभु परमेश्वर कुछ भी नहीं करेगा, मगर वो अपने राज अपने सेवक जो कि भविष्यवक्ता है को बतलाएगा। हम इस धर्मशास्त्र से सीखते हैं कि प्रभु अपने भविष्यवक्ताओं को वो सभी कुछ बतलाएगा जो वो सोचते हैं उपयुक्त है हमें बतलाने के लिए। वो अपनी इच्छा हम पर प्रकट करेगा और वो अपने भविष्यवक्ताओं द्वारा हमें सिखलाएगा। प्रभु ने वादा किया है कि अगर हम विश्वास करेंगे उन पवित्र भविष्यवक्ताओं पर, हमको अनंत जीवन मिलेगा। छाता विश्वास के विषय में हम प्रकट करते हैं कि हम भविष्यवक्ता को मानते हैं। मानने का मतलब है विश्वास करना और उन पर भरोसा करना और उनका पीछा करना और उनका करना जो हम से भविष्यवक्ता चाहते हैं। 1980 में जब प्रधान एज्रा टाफ बेंसन 12 देवदूतों का परिषद के प्रधान थे, उसने मैरियट सेंटर में एक BYU डिवोशनल पर एक प्रभावशाली संदेश दिया भविष्यवक्ताओं के प्रति आज्ञाकारी होने पर। उनके भाषण का शीर्षक मेरे दिल को भा गया, 14 फंडामेंटल्स इन फॉलोइंग द प्रॉफिट। मुझे अच्छा लगा ये जानकर कि मैंने भविष्यवक्ताओं को प्रति आज्ञाकारी होने का निर्णय किया था अपने बाकी की जीवन के लिए, जब मैंने प्रभु के सच्चे गिरजाघर में बैप्टिज्म ग्रहण किया था। मैंने प्रधान बेंसन के सिखलाए गए कुछ सिद्धांतों को बताना चाहता हूँ। पहले, प्रॉफिट इज द ओनली मैन हु स्पीक्स फॉर द लॉर्ड इन एवरीथिंग। हमारे दिनों में परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं ने हमें अपने बंधुओं से प्रेम रखने, सेवा करने, उभाती पीड़े का देखभाल करने, सक्रिय ये काम सकती है, सदस्यों को बचाना, वो सभी कार्य जिसे भविष्यवक्ताओं के जरूरी कार्य कहा जाता है जो करने के लिए कहा। हमें समझना चाहिए कि ये जरूरी कार्य परमेश्वर के भी जरूरी कार्य है, और भविष्यवक्ता उनकी आवाज है इसी दुनिया भर में गिरजाघर तक पहुंचने के लिए। हमें सलाह दिया गया है कि हम उनके सभी वाणी और आज्ञाओं पर ध्यान देना है। हम ये भी सीखते हैं कि हमें उनके वाणी को ऐसे अपनाना है जैसे खुद प्रभु के मुंह से हो, पूरे सब्रा और विश्वास से। जब हम ऐसा करते हैं, नरक से फाटक हमें रोक नहीं सकेंगे और प्रभु परमेश्वर हमारे सामना के अंधेरे के शक्तियों को दूर भागेगा और स्वर्ग को हमारी अच्छाई के लिए, अपने नाम के गौरव के लिए हिला देगा। जीवित भविष्यवक्ता हमारे लिए खास प्रतिकरण प्राप्त कर रहे हैं। मैं कई बार मौजूद रहा हूं जब प्रभु को कोई एक सेवक किसी शहर या देश से एक खास विषय पर भाषण दिया है। मुझे कम से कम 3 जीवित भविष्यवक्ताओं, देवदूत और प्रतिकर्ता याद है जिन्होंने मेरे देश ब्राजील के बारे में कहा है। इनमें से एक कहा था, ब्राजील विश्वास का बहुत बड़ा इकॉनमी होगा और वहां दामों में बढ़ंती से मुक्त रहेगा। उस समय हर महीने दो आखते के बढ़ंती होती थी। कई लोगों के लिए कठिनता भविष्यवक्ता की बातों पर विश्वास करना, मगर मैंने विश्वास किया। पिछले कई वर्षों में हर वर्ष ब्राजील में 5% की बढ़ंती हुई है दामों में। ब्राजील विश्वास की इकॉनमी में 9th स्थान पर है और देश अब बहुत अच्छा चल रहा है। तीसरा मूल सिद्धांत है, द लिविंग प्रॉफिट इज मोर इम्पोर्टेंट टू अस देन अ डेड प्रॉफिट। हम धर्मशास्त्र में से इस के बारे में एक बढ़िया सबक पाते हैं। नोआ के ज़माने में लोगों के लिए आसान होता था मारे हुए भविष्यवक्ताओं में विश्वास करना, मगर नोआ में विश्वास करना कठिन। हम जानते हैं कि उनके अविश्वास के कारण वो बढ़ से बच नहीं सके। चौथा मूल सिद्धांत है, प्रॉफिट विल नेवर लीड द चर्च एस्ट्रे। प्रॉफिट विल्फोर्ड वुड्रफ ने कहा, प्रभु कभी मुझे या किसी अन्य व्यक्ति को गिरजाघर का प्रधान होगा को तुम्हें गुमराह करने नहीं देगा। ये योजना में नहीं है, ये परमेश्वर की मन में नहीं है। अगर मैं ऐसा करूँगा, प्रभु मुझे मेरी जगह से निकाल देंगे और वो उन्हें भी निकाल देंगे जो मनुष्य के बच्चों को गुमराह करने की कोशिश करेगा, परमेश्वर को वचनों और उनके जिम्मेदारियों से। पांचवा मूल सिद्धांत, द प्रॉफिट इज नॉट रिक्वायर्ड टू हैव एनी पर्टिकुलर अर्थली ट्रेनिंग और क्रेडेंशियल्स टू स्पीक ऑन एनी सब्जेक्ट और एक्ट ऑन एनी मैटर एट एनी टाइम। प्रभु ने एक जवान पुरुष जोसेफ स्मिथ को नियुक्त किया अपने गिरजाघर को पुनर्स्थापित करने के लिए। क्या आप सोचते हैं कि बालक जोसेफ स्मिथ ने धर्मशास्त्र संबंधी पढ़ाइयाँ विज्ञान में दाखिला की? हम जानते हैं कि वो एक विनम्र और बहुत अच्छी तरह से पढ़ा लिखा बालक नहीं था, मगर उसे प्रभु द्वारा चुना गया था और उसे प्रभु द्वारा प्राप्त हुआ था वो सब कुछ जो पुनर्स्थापना किया भविष्यवक्ता की नियुक्त का सम्मान करने और आगे बढ़ाने में लगेगा। प्रधान बेंसन ने और कहा, सिक्स्थ, द प्रॉफिट डज नॉट हैव टू से थस सेथ द लॉर्ड टू गिव अस अ स्क्रिप्चर। सेवंथ, द प्रॉफिट डज टेल्स अस व्हाट वी नीड टू नो, नॉट ऑलवेज व्हाट वी वांट टू नो। और प्रधान प्रेसिडेंट बेंसन ने पहले नीफाई 16:1-13 से कुछ निकला,
Behold, they said unto me, Thou hast declared unto us hard things, more than we are able to bear. And now, my brethren, if ye were righteous,
और अब मेरे भाइयों, अगर तुम धार्मिक होते और सच्चाई सुनना चाहते हो और उपसर ध्यान देते कि तुम परमेश्वर के साथ चल सको, तब तुम सच्चाई सुनकर फुसफुसाते नहीं और कहते, तुमने हमसे कठिन बोली कही है। आठवां मूल सिद्धांत,
to cure leprosy by telling a man to wash him 7 times in a particular river, yet this is precisely what the prophet Elijah told the leper to do, and he was healed.
और प्रधान बेंसन अन्य सिद्धांत बतला गया भविष्यवक्ता से आज्ञाकारिता पर। मैं आखिरी छा पढ़ूंगा और तुम्हें आमंत्रित करूंगा अपने अगले घरेलू शाम सभा इन सिद्धांतों को हमारे जीवित भविष्यवक्ताओं, देवदूतों और प्रतिकर्ताओं की वाणी और शिक्षण में ढूंढने के लिए इस महासम्मेलन को दौरान। 9th, the prophet can receive any revelation on any matter, temporal or spiritual. 10th, the prophet may be involved in civic matters. 11th, the two groups who have the greatest difficulty in following the prophet are the proud who are learned and the proud who are rich. 12th, the prophet will not necessarily be popular with the world. 13th, the prophet and his counselors make up the first presidency, the highest quorum in the church. 14th, the prophet and the presidency, the living prophet and the first presidency, follow them and be blessed. Reject them and suffer. हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें इस सुंदर महासम्मेलन के दौरान हमारे जीवित भविष्यवक्ताओं, देवदूतों और प्रतिकर्ताओं की वाणी मिली है। वो हमारी उनके लोगों के लिए प्रभु की इच्छा प्रकट करेंगे। वो हम तक परमेश्वर की वाणी और उनकी सलाह पहुंचेंगे। ध्यान देना और उनके शिक्षण करना, सुझावों पर चलना, और मैं गवाही देता हूं कि तुम्हारी जीवन पूरी तरह आशीर्वाद से भर जाएगा। यीशु मसीह ही मसीह है, हमारे उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता। थॉमस एस मॉन्सन परमेश्वर की जीवित भविष्यवक्ता है और 12 देवदूतों के परिषद भी भविष्यवक्ता है, देवदूतों और प्रतिकर्ता है। यीशु मसीह के नाम से आमेन।
The choir and congregation.
मंडली और सभा अब साथ मिलकर गाएगी Put Your Shoulder to the Wheel. गीत की समाप्ति पर ब्रदर डेविड मकांकी रविवार पाठशाला का महाअध्यक्षता के प्रथम सलाहकार हम से बातें करेंगे, जिसके बाद हम एल्डर डी टाड क्रिस्टाफसन जो 12 के परिषद के हैं से सुनेंगे। गायक मंडली फिर गाएगी Tell me the stories of Jesus.
This is the 180th semi-annual general conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
As a member of the General Sunday School Presidency,
General Sunday School Presidency के सदस्य की तरह मैंने ऐसा महसूस करता हूँ कि मैं अपने सुबह आलोचना से अच्छी सुबह कक्षा, इसे कहना है शुरू करना। मेरे संदेश आज के उन सभी के लिए है चुने गए हैं पढ़ने के लिए, चाहे तुम किसी भी संकटों में सेवा प्रदान करते हो। मैं बात नहीं करूँगा कि कैसे पढ़ाया जाता है, लेकिन कैसे हम सीखते हैं। कुछ देर के लिए सोचो कि शिक्षा के लिए जिसने तुम्हारी जिंदगी में बदलाव को लाया है, उसमें क्या था जो तुम्हें याद करने में मदद किया जो उसने पढ़ाया था कि तुम सच्चाई को खुद के लिए दौड़ना चाहिए, अपने शाखा को शिक्षा दे और उनके बिना में। उस शिक्षा में क्या तुम जो उससे सबसे अलग कर दिया। एक सफल शिक्षा और लेखक ने कहा, जो सीखने में सबसे जरूरी है वो है बनाओ उस शिक्षा का भाव। लिखे के जो सीखने में बहुत जरूरी नहीं है कि कितनी सालों के एक शिक्षा गिरजाघर की सदस्य है, ये कितना पढ़ने का अनुभव है एक व्यक्ति के पास है। जो सबसे ज्यादा जरूरी है कि वो आत्मा जिसके शिक्षा पता है। एल्डर जेफरी आर होलल ने दुनिया भर के सिखाया। कई सालों में मैंने विलियम ई बैरेट के लिखो पर रविवार वादलन किया। वो भाषा को बहुत अच्छी तरह से नहीं जानता था। उसके पास एक वजनदार डेनिश बल था। वो बहुत बड़ा था किसान के बड़े हाथों के साथ। फिर भी उसे इस जवान को पढ़ाना था, 15 साल का, जिससे मुश्किल से संभाला जाए। सभी कार्य के रास्ते में वो दोनों को देखने में बहुत अच्छी जोड़ी नहीं लगी, मगर भाई बैरेट कहता था, और ये ही वो भाग जो है प्रधान पेकर बतलाते हैं, और भाई बैरेट के गवाही था। अलग छत शिक्षा और मजबूत प्रभाव बच्चों पर पढ़ा जो आग की कर्म शक्ति था हाथों में। वो सुसमाचार के प्यार करते हैं जो सफल सुसमाचार के शिक्षा होते हैं। वे उसका लेखर खुश है, और क्योंकि वो अपने विधानों पर करते हैं, वो चाहते हैं कि ऐसा महसूस करते हैं जैसे उन्होंने और वो अनुभव किया। भाइयों बहनों, ये शिक्षा के भाव को उत्पन्न नहीं किया जाता, वहाँ उत्पन्न होती है दूसरे रास्ते का। किस तरह फिर क्यों हम भाव में उत्पन्न कर लेते नहीं जो एक सफल शिक्षा को जरूरी है। पहले अपने आप को ज्यादा सुसमाचार में डालो। हम उस पे प्यार नहीं कर सकते जिससे हम नहीं जानते। हर समय सुसमाचार को पढ़ने से बनाओ। सुसमाचार को पढ़ने से पहले हमें सुसमाचार को जानना चाहिए। प्रधान मनसन अब भी अपने लड़पन के रविवार बयान में कहते हैं, वो मेरा अनुभव था कि छोटे से लड़के की तरह बहुत सफल और प्रेरित शिक्षा के प्रभाव का जिसमें हमें सोना है जिससे प्यार किया, उसका नाम लूसी किर्त था। हमारे एडम के गिरने से यीशु की प्रश्चित का बलिदान हुआ। अपने आप साथ कक्षा में मोसेस, जोशुआ, पीटर, थॉमस, पॉल और सही में यीशु को उधार नौतरी की तरह लाया। चाहे हमने उसे देखा नहीं, हमने प्यार करना सीखना पिछले चलना। लूसी ग्रेच ने नेतारों से अपने कक्षा में बुला सकी क्योंकि वो उन्हें जानती थी, उन्हें उसे प्यार मिलता थी। उसे करना उसके कक्षा में भी प्यार आधार और पीछी। प्रभु ने हरम स्पीच से कहा, मेरे शब्दों को ढूंढो नहीं खोजना के लिए, मगर पहले मेरे शब्दों को ढूंढो पाने के लिए। ये अनुशासन है सबको लागू के लिए। उनकी वाणी को प्यारा पियो और खजाने की तरह रखना। हम उसकी आवाज को पाएंगे। जब मैं स्टेक प्रधान बना, एलिया 70 ने हमको आकर तैयार किया। उस शिक्षा के द्वारा मैंने एक सवाल पूछा जिसके उसने जवाब दी। वो अच्छा सवाल है। जेवल हैंडबुक को इंस्ट्रक्शन को देखना जवाब के लिए। हमने हैंडबुक में देखा कि वो मेरे सवाल का जवाब था। हमारे शिक्षा में कुछ देर बाद मैंने दूसरा सवाल पर एक बार और उसने जवाब दिया। अच्छा सवाल है, हैंडबुक को देखो। मैंने फिर दूसरा सवाल नहीं पूछा। मैंने सोचा कि मैंने हैंडबुक पढ़ लूँ। मैंने तब से समझा कि सभी को ऐसे ही बताऊं कि हमारे सवाल होंगे तो ऐसे ये अच्छा सवाल है, लेकिन तुम ये पढ़ सकते हो जो चैप्टर 5 में है। भाई और बहनों, ये वो रास्ता नहीं है जैसे स्वर्ग चाहता है प्रभु के लिए। हम एक के लिए अकेले द्वारा कि उसने हमें पहले ही बदला दिया है था। सुसमाचार मसीह के शब्दों की से भरी हुई है। वो प्रभु की आवाज है। सुसमाचार को पढ़ने से प्रभु की आवाज को सुनने में सीख सकते हैं। दूसरा, अपने जिंदगी में इस्तेमाल करो जो तुम सीखते हो। जब हैरम स्मिथ महान अंतिम दिनों के कार्य में भाग लेने के चाह की था, प्रभु ने हैरम स्मिथ को बताया कि उसका कार्य था कि वो आज्ञा को पालन करे पूरे मन, बुद्धि और शक्ति के साथ। शिक्षा की तरह हमारा कार्य पहला और जरूरी है कि आज्ञा का पालन करने में मन, बुद्धि और शक्ति के साथ। तीसरा, स्वर्ग की मदद लो। प्रभु से उसकी आत्मा को मांगो अपने हृदय की संपूर्ण शक्ति के द्वारा। सुसमाचार बतलाता है कि अगर तुम आत्मा को प्राप्त नहीं कर सकते हो तो मत पढ़ो। इसका मतलब है कि अगर तुम सारी सही पढ़ाने की निपुणताओं को इस्तेमाल करोगे बिना सही आत्मा से। एक शिक्षा का कार्य ये है कि हर एक मदद करने सुसमाचार को सिखाने की जिम्मेदारी ले कि ताकि उसकी चाहत बढ़े पढ़ने समझने में। इसका मतलब है कि शिक्षा की तरह हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें कार्य को कैसे करते हैं, बल्कि कैसे हम दूसरों को मदद करने। वो कब था कि तुम प्रार्थना के लिए झुक थे और प्रभु से सिर्फ मदद नहीं मांगे अपने पता में, बल्कि मदद मांग रहे हो? कोई भी कक्षा इतनी बड़ी नहीं है कि हम प्रार्थना ना कर सके कि किसी तरह की प्रेरणा को पाए। ये सही है कि शिक्षाओं के काम हमें कोई महसूस होता है। तुम्हें ये समझना जरूरी है कि उम्र और युवा और सोचने की शिक्षा किसी तरह नहीं होती। यह प्रभु की उसकी आत्मा से बातें करने के लिए कोई भी मात्रा जरूरी। प्रभु ने वादा जरूर किया है, हम तुम सच्चे दिल से सुसमाचार को ढूंढोगे और अपने मन में हमेशा जिंदगी की शब्दों को सुनोगे तरह और आज्ञा का पालन करोगे। दिल के कार्य तुम्हें पवित्र आत्मा मिलेगा और तुम प्रकट होगे, प्राप्त करोगे। चौथा, भाइयों बहनों, ये बहुत जरूरी है कि हम अपने शिक्षा को इस्तेमाल करने के कार्य बिना करे आत्मिक के साथ तुरंत ही प्राप्त करें। प्रधान थॉमस मनसन ने पढ़ाया, हम देखें, हम इंतजार करें, हम इस छोटे से आवाज को सुने जब वो बदलती है। होशियार आदमी और औरत मानते हैं आत्मा के साथ देर नहीं किया जाता। तुम अपने शाखा में करने के लिए मत करो और चाहत को करने की ओर प्रभु से पाओगे। आत्मा हमारे दिल में करता है। पहले तुम अच्छा नहीं महसूस करोगे, मगर मैं वादा करूंगा कि सबसे मिलता है सुख अनुभव करोगे कि शिक्षा की तरह जब तुम प्रभु की कार्य को उसी की तरह से करोगे। तुम्हारे अनुभव तुम्हारे विश्वास को बढ़ाएगा और जिंदगी हिम्मत देगी कार्य के करने में आगे जिंदगी में। प्यारे शिक्षियों, तुम गिरजा घर के एक महान चमत्कार हो। तुम्हारे पास पवित्र विश्वास है। हम तुमसे प्यार और प्रोहित हुए हैं। मैं जानता हूं कि अगर हम सुसमाचार को ढूंढोगे और अपनी जिंदगियों के लायक से जियोगे ताकि पवित्र आत्मा हमारे साथ रहेगा, प्रभु हमारे नियुक्त और जिम्मेदारियों में बढ़ाएगी देगी ताकि हम अपने प्रभु से अपने कर्तव्य को प्राप्त करें कि वो हमारे सब। ये मेरी प्रार्थना है यीशु मसीह के नाम से, आमेन।
As a youth,
जब मैं युवक था, मैंने 1964 में न्यूयॉर्क शहर के वॉल्स फेयर में घूमने गया. मेरा मनपसंद जगह था एलडीएस गिरजाघर का स्थान, जिसका सोलेक मंदिर के स्पायर्स का प्रतिरूप बहुत आकर्षक था. वहां पहली बार मैंने फिल्म मैसेज फॉर हैप्पीनेस को देखा था. उसमें एल्डर रिचर्ड जिसेल ने बनाया था को मुझ पर और आए हुए लोगों पर बहुत असर डाला. अन्य बातों के अलावा एल्डर एवर्स ने कहा था, जीवन तुम्हें दो बहुत बहुमूल्य उपहार देता है. एक तो है समय, दूसरा चुनने की स्वतंत्रता कि तुम अपने समय से वो करो जो तुम चाहते हो. तुम खुद अपना समय रोमांचक कार्यों के लिए बदल सकते हो. तुम उसे कम मुआयना रखने वाले इच्छाओं के लिए बदल सकते हो. तुम इसे लालच में काम में ला सकते हो. चुनने की स्वतंत्रता तुम्हारी है, मगर ये कोई सावधाव नहीं है, क्योंकि इसमें तुम्हें हमेशा का संतोष नहीं मिलता. हर दिन, हर घंटे, हर मिनट तुम्हारे मन मरणशील जीवन का सभी तो हिसाब दिया जाएगा, और वो इस जीवन में है कि तुम विश्वास के साथ चलो और सभी करो कि तुम अच्छा कार्य, बुरा, सही या गलत, खुशी के झेलना या मनोरंजन के बीच ठीक चुनाव करने के योग्य हो. परमेश्वर, एक भविष्यवक्ता ने कहा है, मनुष्य है कि उन्हें खुशहाली प्राप्त हो. ये बातें हमारे धरती के जीवन के विश्वसनीयता वास्तविकता बतलाता है कि वो समय और चुनाव का देखभाल है हमारे सृष्टिकार द्वारा. देखभाल शब्द या दिलाता है प्रभु के समर्पण करने का कानून, जिसका एक अतिरिक्त कार्य है, मगर उससे ज्यादा जीवन के ऊंचे कानून के बारे में बतलाता है. या और अभी समर्पित करने का मतलब है अलग करना या समर्पित करना किसी चीज को पवित्र कार्य के लिए, पवित्र, अलग. इस जीवन की सफलता आती है जब हम अपना जीवन समर्पित कर दें, यानी कि हमारा समय और चुनाव परमेश्वर के लक्ष्य के लिए. ऐसा करने से हम उसे मौका देते हैं हमें अपने सबसे अच्छे भाग्य तक पहुंचाने के लिए. मैं आपके साथ जीवन के पांच तत्व पर चर्चा करना चाहता हूँ. शुद्धता, काम, अपने शरीर का सम्मान, सेवा और सचपन. जैसे उद्धारकर्ता ने दिखलाया, समर्पित जीवन शुद्धता जीवन है, क्योंकि यीशु की ही इकलौता है जिसने पाप मुक्त जीवन बिताया. गहरा प्रेम से प्रभु हमें प्रोत्साहित करता है इन शब्दों से, संसार के सभी कानून में तुम पश्चाताप करो और मेरे पास आओ और मेरे नाम पर बपतिस्मा लो, जिससे तुम की पवित्र आत्मा के स्वागत के लिए तैयार हो जाओ. समर्पित का मतलब है पश्चाताप, सिद्धिपन, विरोध और वजाओ ढूंढना, छोड़ देना चाहिए और उसकी जगह सुधारने की इच्छा और वो सब अपनाना जो प्रभु चाहते हैं. ये है वो जो राजा बेंजामिन ने कहा, स्वाभाविक प्रकृति का त्याग कर पवित्र आत्मा के आकर्षणों से प्रभावित होना और प्रभु मसीह के प्रेषित द्वारा संत बन जाना. एल्डर बी एच रॉबर्ट्स ने एक बार इस क्रिया को ऐसे समझाया, वो व्यक्ति जो ऐसा चलता है परमेश्वर के उज्याला और बुद्धि और शक्ति से, आखिरी में संगत में शक्ति से परमेश्वर के उस उज्याले और बुद्धि और शक्ति को अपना लेगा. उन चमकीले किरणों को एक दिव्य चेन में खूकर अपने आप को हमेशा के लिए परमेश्वर से और परमेश्वर को खुद से जोड़ लेगा। ये मसीह के गुप्त बातें, तू ही पिता मुझ में है और मैं तुझ में है। एक समर्पित जीवन सेवा का जीवन होता है। अपने जीवन को शुरुआत में यीशु अपने पिता के कामों में लगा था। परमेश्वर ही अपनी प्रशंसा होती है उसके अपने बच्चों को अमर करने और जीवन देने का कार्य द्वारा। हम में इच्छा उत्पन्न होती है उससे उसके कार्य में सहायता करने की। थॉमस कार्लाइल के शब्दों में, सभी सच्चा काम पवित्र है। सभी सच्चे काम में अगर वो अपने हाथों का ईमानदार काम हो, कुछ दिव्यता है। ईमानदार काम किसी भी तरह का विश्व भर में स्वर्ग तक पहुंचता और वही समझता किया जाता है। परमेश्वर ने इस मरणशील जीवन को रचा है लगातार परिश्रम में लगे रहने के लिए। काम से हम जीवन को कायम रखते और उपजाऊ बनाते हैं। वो हमें मरणशील अवस्था के निराशाओं और कठिनाइयों को झेलने के योग्य बनाता है। एक समर्पित जीवन काम से भरा होता है। कभी कभी धैर्य जाता, कभी विनित, कभी अवसुकर किया जाता, मगर हमेशा ऐसे काम से जो बेहतर करता, रीति देता, स्वीकार करता, उद्यता सिखलाता, अच्छा करने की सोचता। कामकाज की प्रशंसा की बातें करने के बाद मुझे आराम पर भी कुछ अच्छा करना होगा। जैसे कि कड़ी मेहनत आराम को महत्वपूर्ण देता है। यह सब मनोरंजन प्रदान कर सकते हैं किसी के जीवन को। इसके साथ ये कहना जरूरी नहीं होगा कि आजकल जिसे मनोरंजन कहा जाता है वो अश्लील, अपमानजनक, हिंसापूर्ण, मन को सुन कर देने वाला और समय बर्बाद करने वाला होता है। जब मनोरंजन सद्गुण से भरी आदत बन जाता है वो समर्पित जीवन के लिए विनाशक करने वाला बन जाएगा। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों, तुम ये मत समझ बैठना कि जो बुरी बातें हैं वो परमेश्वर की है। मरणशील अनुभव का मुख्य लक्ष्य है कि हर एक आत्मा को एक शरीर प्राप्त होगा और वो मानव देह में नैतिक रूप से चुना सीखेगा। जो लोग समझते हैं कि तुम्हारे शरीर एक चक्रदार मौके का परिणाम है, वो परमेश्वर या किसी और के प्रति उत्तरते नहीं महसूस करेगा अपने शरीर के साथ ये उस पर कुछ करने के लिए। हम में से जिनके पास विशाल वास्तविकता का बनाया बयान है मरणशील जीवन से पूर्व, मरणशील जीवन और मरणशील जीवन से अनंतता का को हालांकि अपनाना चाहिए कि हमारे पास परमेश्वर के प्रति एक जिम्मेदारी है, क्योंकि उसने शरीर की रचना इतनी अच्छी तरह से की। पॉल के शब्दों में, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देख द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। इन सच्चाइयों को पिछले अप्रैल में महासम्मेलन में दिया प्रधान फ्रांसिस मोशन ने निर्देशन को अपनाते हुए जो था तैयारी आशीर्वाद लाते हैं। हम अपने शरीर को बर्बाद नहीं करेंगे जैसे गुणों से या कमजोर करना जैसे निचले पदार्थ से या अपवित्र करना जैसे उनके बीच यौन संयोग जो एक दूसरे के साथ शादी ना किए हो, क्योंकि वो हमारे आत्मा को अवजार है। पॉल ने कहा, मेरे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया याद दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भवता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी अंतिम सेवा है। यीशु ने सिखलाया कि एक समर्पित जीवन सेवा का जीवन है। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए, तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखलाया है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं और ना भेजा हुआ अपने भेजने वाला से। हमारे समय में कोई और इतनी अच्छी तरह से इस बात को दैनिक जीवन में अपनाता नहीं जैसे प्रेसिडेंट थॉमस सेसनसन ने किया। उसके काम इतने तेज हैं कि वो आत्मा की हाल की से भी फुसफुसाहट सुन लेती है जो किसी तक पहुंचने या सहायता देने की जरूरत बतलाता है। प्रेसिडेंट मॉन्सन फिर ये बतलाता है, लेकिन मैंने अपने आजा और आजी एल्डर डेविड और लुइसी विक्ट्री क्रिस्टोफरसन के जिंदगी में ऐसा समर्पण पाया। आज के ताकतवर आदमी थे और भेड़ों के बाल निकलाने में माहिर थे। जब बिजली से चलने वाली कैंची नहीं थी, वो अच्छा काम लेते थे। उसने कहा, एक दिन मैं 287 भेड़ों के बाल निकाले और 300 के निकाल सकता था, मगर भेड़े कम थे। 1990 में उसने 12,000 भेड़ों के बाल निकाले और 2,000 कमाए। एक समर्पित जीवन सच्चेपन का जीवन है। हम ये उस पति और पत्नी में देखते हैं। वर्षों पहले मेरी पहचान दो परिवार से हुई जो साथ में जुड़े हुए एक व्यवसायिक कारोबार को खत्म कर रहे थे। मुख्य मालिक थे दो पुरुष जो दोस्त थे और एक ही ईसाई दल में थे, ने ये कारोबार वर्षों पहले आरंभ किया था। उसमें से एक साथी ने एक चाली अपने वकीलों के साथ मिलकर, जिससे वो अपने लिए काफी दान निकाल लेगा। कारोबार के खत्म होते समय जिसके द्वारा दूसरे साथी और उसके बातों को दान संबंधित टूटा होगा। दोनों दलों की एक सभा में एक बेटे ने इस अन्यपूर्ण बातों से शिकायत की और पहले साथ एक आग्रह की वो अपने सम्मान और ईसाई विश्वास पर निवेदन किया। तुम जानते हो ये ठीक नहीं है, उसने कहा, तुम कैसे किसी का तरफ गलत फायदा उठा सकते हो, खासकर एक ही गिरजाघर के भाई से। पहले सही के वकील ने खड़ा उठर दिया, अरे बड़े हो जाओ, तुम कैसे इतने ऐसे बोल सकते हो। अच्छापन भोला नहीं कहलाता। भोलापन ये है कि हम परमेश्वर के प्रति उत्तरदायी नहीं होते। उद्धारकर्ता ने घोषणा की, मेरे पिता ने मुझे इसलिए भेजा कि मैं क्रूस पर उठाया जाऊं, कि जिससे सब मनुष्य को अपनी ओर आकर्षित कर सकूं। जो कोई समर्पित जीवन जीता है, किसी का गलत फायदा नहीं उठाएगा, मगर अगर जरूरत पड़े तो उसकी ओर दूसरा गाल भी देगा। और अगर कोई तेरा कुर्ता लेना चाहे तो उसे जामा भी देना, उधारकर्ता से सख्त दांत पकड़ियों के लिए होते हैं। वो विश्वास को नष्ट करता है, जबकि सम्मान ऐसा वातावरण पैदा करता जिसमें विश्वास बड़ा होता है। एक समर्पित जीवन बहुत सुंदर होता है, उसका बल और शांति एक बहुत फलदार पेड़ की तरह होता है। हम भी अपने आप को समर्पित करें परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियों के रूप में, कि जब वो प्रकट होगा तब हम भी उसी के सामने होंगे, क्योंकि हम उसका वास्तविक रूप देख सकेंगे, जिससे कि हमें ये आशा प्राप्त होगी।
That we may have this hope, I pray.
आइए मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन।
We are grateful to the
Tabernacle Choir के सहभागी हैं और उनके कंडक्टर्स और ऑर्गनिस्ट के भी सुंदर संगीत के लिए जो उन्होंने आज सुबह प्रदान की है. हमारे अंतिम भाषणकर्ता इस बैठक के लिए रहेंगे प्रधान डीटर एफ उग्दोफ, प्रथम अध्यक्षता के दूसरे सलाहकार. प्रधान उग्दोफ के टिप्पणियों के बाद गायक मंडली गाएंगे द मॉर्निंग ब्रेक्स. प्रार्थना एल्डर एडवार्डो गैवरेट जो 70 के हैं और फिर सम्मेलन टाल दी जाएगी शाम 2 बजे तक. प्रेसिडेंट उग्दोफ.
It's remarkable how
इस संसार के देखकर हम इस जीवन के बारे में कितना सीखते हैं. उदाहरण के रूप में साइंटिस्ट पेड़ के रिंग्स को देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि मौसम आगे कैसे होगा और हजारों वर्ष कैसे था इसके बारे में. हालांकि जब मौसम ठीक नहीं रहता पेड़ धीमी रफ्तार से बढ़ते हैं और हम और अपने ताकत वहां लगाते हैं जो उनके जीवित रहने के लिए जरूरी है. अब तुम सोच रहे होगे ये सब ठीक और अच्छा है मगर इसे हवाई जहाज चलाने में क्या ताल्लुकात है. आओ आओ मैं तुम्हें बताता हूँ. क्या तुम हवाई जहाज में था और जब हलचल अनुभव किया. हलचल का समय वजह होता है हवा की मार्ग में अचानक बदलाव आता है जैसे हवाई जहाज ऊपर नीचे विचलित और ढोलने लगता है. समय उड़ान में जो हलचल होता हमें उतना नहीं महसूस होता क्योंकि हवाई जहाज ऐसा बनाया गया है. तुम्हें क्या सोचते हैं विमान चालक करते होंगे जब हलचल समय होता होगा. एक विमान चालक शायद सोचते रफ्तार बढ़ाना अच्छा होगा क्योंकि वो उसे हलचल से जल्द निकलेगा मगर वो करना शायद गलत है. अनुभव में विमान चालक जानते हैं कि आदर्श जिस पर उन्हें हलचल से गुजरना होता है हलचल के पूरे प्रभाव को कम करेगा और ज़्यादातर उसका मतलब होता है कि रफ्तार कम करो. ये नियम रास्ते पर हम्स पर भी लागू होता है. इसलिए इस एक अच्छी सलाह है कि रफ्तार थोड़ा कम करो मार्ग सीधा हो और ध्यान दो आवश्यकता बातों पर जब पूरा अनुभव कर रहे हो. ये एक सरल मगर नचिक स्वभाव है सीखने के लिए. शायद वो समझने लाए होता पेड़ों के हलचल की समझो के रखो जब इन अनुभव को अपने जिंदगी में लगाओ. जब तनाव बढ़ते हैं जब कठिनाई देखती हो जब दुर्घटना होती है अक्सर हम उसे रफ्तार पर रहते हैं और तेज सी जाने लगते हैं. किसी तरह से सोचते हैं कि जितनी तेजी से हम चलेंगे हम उतना बेहतर होंगे. जीवन का एक विशेष सकता है कि हमारी रफ्तार तेज होती है जा रही है चाहे कोई हलचल या बदलाव हो रहा हो. हम ईमानदार हैं और हमें के वास्तव रहना सरल है. हम सभी कामों के बारे जान सकते हैं जो हमारे सूची को बढ़ा सकती है. कुछ लोग सोचते हैं कि उनको आत्मा मूल्य होगा कम करने वाले सोचे और लंबी में वो अपने सोच का खाली समय संभाव और छोटी कार्य भी यहाँ तक कि तनाव और थकान के समय भी क्योंकि वो बेकार अपने जीवन उलझल देती है, वो अक्सर ज्यादा हादसा महसूस करते हैं। कहा जाता है कि कोई भी सदगुण जब ज्यादा हो जाता है वो पाप बन जाता है। अपने आप को समय ना देना का भी ये अर्थ है। एक क्षण आता है हमारे जीवन में जब सफलता रुकावट बनने लगती है और मुसीबतों बन जाते हैं। बुद्धिमानों को पेक से रिंग के हवाई हलचल के सबक हो समझते और अब है वो दैनिक जीवन के भाग दौड़ में भाग में फंसना नहीं चाहते। वो सलाह लेते हैं, जीवन में रफ्तार बढ़ाने से जरूरी बहुत कुछ है। छोटे शब्दों में वो बातों पर ध्यान देते जो मृत्यु से डेलन चेनरोक्स ने एक हाल सम्मेलन में सिखलाया। हमें कुछ अच्छी आदतों को त्यागना पड़ना है ताकि हम औरों को चुन सके बेहतर और उत्तम, और क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास को करते हैं और परिवारों को मजबूत करते हैं। उत्तम चीजों को ढूंढना जरूर हमें यीशु मसीह के समाचार के बुद्धिमान सिद्धांतों तक पहुंचाएगा। वो सरल और सुंदरता सच्चाई को हमको बदलाई जाती है और दयालु आनंद और कुछ जानने वाले स्वर्ग के पिता द्वारा। ये बुद्धिमान सिद्धांत भले ही बच्चे हो समझे के लिए आसान है, जीवन के सबसे पेचीली सवालों को जवाब देती है। सरलता में सुंदरता और स्पष्ट है जिसकी हम कभी कभी प्रशंसा नहीं करते सुझाव पाने के इच्छा में। उदाहरण के तौर पर एस्ट्रोनॉट और कॉस्मोनॉट धरती का द्वारा करने के कुछ को बुद्धिमान लोग के समझ से सुझाव निकालने भेजे। उसमें हजारों घंटे और लाखों डॉलर लगाया मगर अंत में उन्होंने एक कलम तैयार किया जिसके कहीं पर भी लिखा जा सकता है किसी भी टेम्परेचर में और लगभग कोई भी वर्ष पर। मगर एस्ट्रोनॉट और कॉस्मोनॉट क्या इस्तेमाल कर रहे जब तक समस्या के सुझाव ना मिला था, वह सिर्फ एक पेंसिल इस्तेमाल कर रहे थे।
Leonardo
di Vincenzo ne kaha tha, saralta sabse uttam hai. Jab hum khushiyali ki yojana, udhar ki yojana ke buddhiman siddharton ko dekhte hain, hum jaan paate hain aur prasannta hoti hai swar ke pita ke buddhimani ki sadai aur saralta aur sundarta dekhkar. Phir apna jeevan unke tarike se जीना हमारे बुद्धिमानी का शुरुआत है। कहानी बदलाई जाती है कि परिषद अमेरिकन फुटबॉल का कोच विंस लेम्बार्डी परीक्षा के पिच पहली दिन का रीति कहता था, वो एक जेंड लाता, खिलाड़ियों को दिखाता कि जो कोई वर्षों से खेल रहे थे, और कहता, सज्जनों ये एक गेंद है। वो उसके अगर और रूप की बात करता और कैसे उसको लात मारा जाता, उठाया जाता या पकड़ा जाता। वो टीम को खाली मैदान में ले जाया जाता, ये एक फुटबॉल का मैदान है, उन्होंने उनके साथ मैदान पर चला जाता। इस कहकर ये कोच जानता था कि ये अनुभव खिलाड़ियां भी और सच में टीम बड़ाई खेल देखना सकेगा। वो अपना समय उजड़े हुए छलाकी की खेल को अभ्यास करते बीते सकते थे, मगर जब तक वो खेल को सिद्धियों पर निपुण ना जाते वो कभी टीम नहीं बना सकते। मैं सोचता हूँ कि हम में भी कई लोग सहज से समझ है और बुद्धिमान क्या है। ऐसा होता है कि हम कभी कभी हम अमोहक चीज में ध्यान खो देते हैं, छपे हुए पर्दे, विभिन्न संचार माध्यम, इलेक्ट्रॉनिक औजार और मशीन, सभी लंबाई अधिक सभी इस्तेमाल को पैदा देने वाले मनोरंजन या निर्दय तरीके लोगों से दूर करने के लिए। फिर भी इन सतर्को आवाजों और चुनवाजों के बीच गलीली का वो बीमार पुरुष हमारे खड़ा है, इंतजार कर रहा है। उसने एक संदेश दिया है, आओ मेरे पीछे हो लो। और वो शक्तिशाली माइक्रोफोन से नहीं बोलता, मगर दबे हुए धीमी आवाज से कहता है। कितने आसान है बुद्धिमान से समाचार संदेश को कोने पर कब्रों के भामार में जो सभी ओर से आता है। पवित्र धर्मशास्त्र और जीवेश भाषाओं के बोले गए शब्द सुसमाचार के बुद्धिमानी सिद्धांतों पर जोर डालती है। एक कारण हम एक बुद्धिमान सिद्धांतों के शुद्ध अधिक तक लौटते हैं कि वो घिरे अर्थ की सच्चाई का रास्ता है। वो प्रेरणा भरी अनुभव को दरवाजा हर एक वैसे ही हमारी समझ से बाहर है। ये सरल बुद्धिमान सिद्धांत परमेश्वर और मनुष्य के साथ वो स्वर्ग के खिड़कियों को खोलने की चाबी है। वो हमें शांति, खुशी और समझदारी की ओर ले जाएगा स्वर्ग पिता के अपने बच्चों के लिए। ये सरल बुद्धिमान सिद्धांत के पिता ने अपने बच्चों के लिए वादा किया है जो उनकी सुनने के और करने के। भाई और बहनों, अच्छा होगा अगर हम अपने रफ्तार धीमी कर दें, अपने परिश्रमों को हिसाब की रफ्तार पर चलाते हैं, जरूरी विषय पर ध्यान दें, अपने आँखों उठाए और वो देखे कि ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम उन बुद्धिमान आदेश पर ध्यान दें जो स्वर्ग पिता के अपने बच्चों के दिए हैं, जो एक मलदार और भरपूर जीवन बनाकर आनंद खुशियों पर वादा कह सकता है। वो हमें ये सब चीज विवेक और वास्तव के साथ करेगा सिखाने के, क्योंकि किसी व्यक्ति को अपनी शक्ति की अधिक तेज गति से दौड़ने की आवश्यकता नहीं है, मगर ये आवश्यक है कि मनुष्य परिश्रम करें जिससे वो कि अपने परिश्रम का फल पाएं। भाई और बहनों, परिश्रम के साथ अपने जरूरी कार्य को करने से हम दुनिया के उद्धार कर पहुंचेंगे। इसी कारण हम मसीह की चर्चा करते हैं, हम मसीह में आनंद होते हैं, हम लोगों की मसीह के विषय में उद्देश्य देते हैं, हम मसीह के विषय में भविष्यवाणी करते हैं कि हमारे संतान ये जाने कि वो अपने पापों की क्षमा कैसे पा सके। अथक जीवन में उलझों में ये सभी उत्तम तरीका है। जब हम अपने स्वर्ग पिता के और मृत्यु हैं और उनके ज्ञान पाना चाहते हैं, उनकी विश्वासों पर जो महत्वपूर्ण है, हम लगातार चार जरूरी रिश्तों की महत्व के से और अपने आप से। जब हम अपने जीवन के मूल्यांकन करने एक इच्छापूर्ण मन से हम देखेंगे हम कितने दूर हैं गए हैं सबसे उत्तम तरीके के, हमारा समझ और साफ हो जाएगा और हम जान पाएंगे कि करने पाएंगे कि हृदय को शुद्ध करने और अपने जीवन को फिर मार्ग पर लाने के लिए। पहले परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता सबसे पवित्र और जरूरी है। हम उनके आत्मिक बच्चे हैं, वो हमारे पिता हैं, वो हमारी खुशहाली चाहता है। जब हम उन्हें ढूंढते हैं, जब हम उन्हें पुत्र यीशु मसीह के बारे में सीखते हैं, जब हम हृदय पवित्र आत्मा के प्रभाव के लिए खोलते हैं, हमारे जीवन और अटल और सुरक्षित हो जाता है। हम और ज्यादा शांति, खुशहाली और शांति अनुभव करते हैं जब हम पूरी कोशिश के साथ परमेश्वर के आनंद जीवन को जीते और उनके आज्ञाओं को पालन करते हैं। हम अपने शौहर के पिता के साथ के संबंध के सुधारते हैं, उनके बारे में सीखने ने, उसके बात करने और अपने पापों के प्रायश्चित करने से और फुर्ती से यीशु मसीह के पीछे होने से, क्योंकि बिना मसीह के द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करने के लिए हमें उसके साथ कुछ अर्पित समय बिताना है। शांत के दैनिक व्यक्तिक प्रदान और धर्मशास्त्र अध्ययन पर ध्यान देना है। हमेशा एक चालू मंदिर रखने के साथ ये कुछ अकलमंद काम होगा कि जो हम अपने समय को कोशिश कर सकते हैं स्वर्ग पिता के करीब आने के लिए। हम भाजकर के निमंत्रण को सुने, शांत हो जाओ एंड जान लो कि मन ही परमेश्वर हूँ। हमारा दूसरा जरूरी रिश्ता है परिवारों के साथ है। जब से के सफलता यहाँ पर असफल हजारों नहीं है, हमें अपने परिवारों में ऊंची दर्जा देना है। हमें गिरे प्यार सरलता देना है, जैसे पवित्र भोजन और साथ में मनोरंजन करना। परिवार में प्यार मजबूत होता है जब हम ज्यादा समय बिता सकते हैं। एक दूसरे के लिए समय निकालना महत्वपूर्ण है। घर और हम एक दूसरे के बात करते हैं, ना कि दूसरे के बारे में। एक दूसरे से सीखते हैं और अपने बुद्धिमान और समझ पाते हैं। हमें ध्यान बातें जोड़ लेते हैं एक दूसरे के। जब परमेश्वर के पास जाते हैं और परिवार प्रार्थना सुसमाचार अध्ययन और साथ करते हैं, रविवार में प्रार्थना करते हैं। हमारा तीसरा जरूरी रिश्ता हमारे भाई बंधुओं के साथ है। इसी रिश्ते को हम एक व्यक्ति के समय द्वारा बनाते हैं। औरों के जरूरतों के बारे में जाने और उनके सेवा करने में और अपने समय और गुणों में। एक बहन ने मैंने बहुत प्रभावित किया जब उसने माँ बनने वाली थी और बीमार थी और जाना कि उन्होंने क्या किया। और हम हाफते हुए लोगों को ढूंढते जो मुसीबत में और निराश देखते हैं और अपने वक्त निकाला और उनको सुने। वो कितने सारे लोगों के जीवन में कितने अच्छा आशीर्वाद थी। हमारा चौथा जरूरी रिश्ता अपने आप से है। अजीब लगेगा, ये सच है कि हम खुद के साथ रिश्ता कर सकते हैं, मगर ऐसा ही है। कुछ लोग अपने आप के साथ मौजूद कर सकते हैं। वो अपने आप की निंदा किया करते हैं और अपने आप को छोटा समझ रहते हैं। मेरा सुझाव है कि वास्तव में काम करो और थोड़ा ज्यादा समय निकालो अपने आप को बेहतर जानने के लिए। परमेश्वर की रचना को आनंद लो और वो तुम्हारे लिए क्या है और वो क्या बना अर्थ है। सीखो अपने आप को स्वर्ग पिता की नजर देखो, उनके अनमोल पुत्र और पुत्री जैसा क्या है। भाइयों बहनों, हम होशियार रहे। हम यीशु मसीह के पुनर्स्थापित समाचार के पवित्र सिद्धांत के पानी की हम उसका भोज करें और उनके सुझाव को पाएं। स्वर्ग का द्वार फिर से खुल जाएगा। यीशु मसीह का सुसमाचार फिर से धरती पर आ गया है और उसके सहज सच्चाई हमारे खुशी का स्रोत है। भाइयों बहनों, हमारे पास जरूर भराई वजह है कि हम करें। अगर जीवन और उसकी रफ्तार कई तनाव जाने करने कठिन और शायद ये अच्छा समय है कि ध्यान दो कि क्या ज्यादा महत्वपूर्ण है इस समय। शक्ति हाल भली मेरे कार्य कर है मगर संचल है। वही मिलता है आनंद ध्यान और कोशिश की यीशु मसीह के पुनर्स्थापित समाचार की पर। वो मिलता है दिव्य बातों पर ध्यान देने से जो ज्यादा जरूरी है। हम अपने जीवन को थोड़ा सहज बनाएं, हम कुछ बदलाव लाएं अपने जीवन को सहज की सुधारण करने में। एक मार्ग जो हमेशा आनंदपूर्ण प्रसन्नता और शांति के जीवन रच जाता है। इसकी में प्रार्थना कर होंगे आशीर्वाद छोड़ हों आपके साथ यीशु मसीह के अपने आशीष के साथ यीशु मसीह के नाम से आमीन.
Our dear
Father, हमारे ईश्वर पिता परमेश्वर, ये अंत के इस कॉन्फ्रेंस में हम आभारी हैं जो आत्मा हमने महसूस किया है, जो गाने हमने सुना. हम धन्यवाद देते हैं अपने
भवश्विकता के लिए, हमारे यीशु मसीह के लिए जो हमने आशीष दिया है। हम धन्यवाद देते हैं अपने प्रेसिडेंट थॉमस एस मॉनसन के लिए, और हम प्रार्थना करते हैं उसके आशीष उसके ऊपर और उसके काउंसलर्स के साथ हो, और सभी अपोजलों के साथ भी। धन्यवाद पिता, जो सलाह आपने हमें आज दिया है, और हम आपसे आपके आशीष चाहते हैं कि ताकि हम उसे अपने कार्य में लगा सके। सहायता कर ताकि हम अपने भाइयों की देखभाल कर सकें, ताकि हम यीशु मसीह की तरह बन सके और अपने प्रॉफिट की तरह। हम आभारी हैं जो टेंपल मंदिरों के लिए। पिता, जाने से पहले हम आपसे यही मांगते हैं कि आपकी आशीष कि जो पवित्र आत्मा हमने महसूस किया है कि हमारे साथ रहें, ताकि हम ये कह सकें और बता सकें कि आपकी आज्ञा हो सभी कर्म के, आपके वाणी हम पालन करें। यीशु मसीह के नाम से आमीन।
This has been the first
Bible distribution द्वारा इस प्रसारण की पूर्ति जनता सेवा के रूप में।
Speakers were selected from the general authorities.
ये है बिना लिखित अनुमति के इस कार्यक्रम को कोई भी पुनर्पादन अभिलेखन प्रतिलेखन या अन्य इस्तेमाल।
This broadcast has been furnished as a public service by Bonneville Distribution. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited.